स्वयंवर को गए योद्धागण भानुमति के साथ हस्तिनापुर की सीमा पर गंगा किनारे आ गए हैं। यह समाचार नगर में फैल गया। उनके स्वागत के लिए सब तत्परता से व्यवस्था करने लगे। नई महारानी के दर्शन करने के लिए आतुर नगरजन हाथों में पुष्प मालाएं लेकर राजमार्ग पर एकत्रित होने लगे। युवराज्ञी भानुमति अब महारानी भानुमति हो गई थी, हस्तिनापुर के अपार वैभव संपन्न साम्राज्य की सम्राज्ञी। अंत में एक सुसज्जित राज हाथी पर अंबारी में बैठे हुए महाराज दुर्योधन नगर में प्रवेश करते हुए राजप्रसाद के सम्मुख आए। उनके दाएं ओर अंगराज भी थे, बाएं ओर महाराज महारानी भानुमति थी, उनकी बाएं ओर एक स्त्री थी। संभवतः वह महारानी भानुमति की कोई प्रिय सखी होगी, अन्यथा वह अंबारी में बैठती ही क्यों, और भानुमति से भी अधिक रूपवती थी। राजप्रसाद के भव्य महाद्वार पर राजमाता गंधारी देवी ने वरवधू की आरती उतारी। उनके साथ ही दोनों ओर खड़े अंगराज तथा देवी भानुमति की सखी भी थी। आरती उन्होंने उतारी। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण आरती उतारने में उस त्यागी राजमाता को कितनी कठिनाई हुई होगी। वरवधु ने पितामह भीष्म विदुर शकुनिमामा आदि गुरुजनों को वंदन कर राजभवन में पदारोपण किया। महारानी के सखी ने भी राजभवन में पैर रखा। मुझको अंगराज का एक एक कुंडल दिखाई देने लगा, क्योंकि वे अपना मुख मोड़कर महारानी भानुमति की सखी की ओर देख रहे थे। गर्दन मुड़ी होने के कारण उनका उस ओर का कुंडल मुझको दिखाई ही नहीं दे रहा था। 7. नई महारानी के आगमन से राजभवन में जैसे वसंत आ गया। महाराज दुर्योधन का जीवन विवाह के उद्यान में फूलेगा फलेगा यह सोचकर हम दोनों को संतोष हुआ। कभी कभी अविवाहित मनुष्य क्रुद्ध होकर अविचारपूर्ण कृत्य भी कर सकता है, किंतु विवाहित व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। आज तक महाराज दुर्योधन के जो दुस्साहसी एवं उद्दंड कार्यकलाप सुनाई पड़ते थे, अब भविष्य में उन पर प्रतिबंध लगने वाला था। स्त्री यदि चाहे तो अपने पति के विध्वंसक क्रोश को शालीन कर्तृत्व में बदल सकती है। यह कला मैं समय समय पर महारानी भानुमति को कुशलतापूर्वक बताना चाहती थी, उसके मन को ठेस न पहुँचाते। पराक्रमी पुरुषों का जीवन उनकी स्त्रियों के हाथ में होता है। कभी अपने प्रेम से तो कभी अपने सौंदर्य से वे अपने पति को संकट के समय सावधान कर सकती है। इसीलिए मुझको महारानी से परिचय बढ़ाना था। सब ठीक ठीक हो जाने पर मैं उनसे मिलने का निश्चय कर लिया था, परंतु मैं उनसे मिलने जाऊँ इसके पूर्व ही मेरे लिए महाराज दुर्योधन का बुलावा आ गया। यद्यपि वह अनपेक्षित था, तथापि मुझको उस पर आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे पति के पराक्रम का वर्णन सुनाने के लिए उन्होंने मुझको बुलाया होगा। मुझको ऐसा लगा मैं एक स्त्री थी, और ऐसी कौन सी स्त्री है जो एक मानी राजा के मुख से अपने पति के पराक्रम का वर्णन सुनना नहीं चाहेगी। राजमाता कुंती देवी की दी हुई नीले रंग की साड़ी में पहनकर मैं मृणाल नामक दासी को लेकर उनसे मिलने जाने का निश्चय कर रही थी, परंतु मैं जिस शारीरिक स्थिति में थी उस स्थिति में मैं पुरुष के सम्मुख नहीं जा सकती थी। मैं गर्भधारिणी थी। अंत में निश्चय कर मैंने मृणाल द्वारा संदेश भिजवाया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए आप ही बिना किसी संकोच के मुझसे मिल जाए। अब शायद उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत अभिमानी था। आखिर वे कौरवों के ज्येष्ठ युवराज हस्तिनापुर के सम्राट थे। फिर भी मृणाल के साथ मेरे भवन की ओर आ रहे थे। मुझको वह गवाच से आते हुए स्पष्ट दिखाई दे गए, इसलिए मैं बड़ी तत्परता से भवन के भीतरी कक्ष में जाकर बैठ गई। हो सकता है कि वे क्रुद्ध हो गए हों, इसलिए मैं मन ही मन साहस संचित कर उनका कथन सुनने की तैयारी करने लगी। वे चाहे जो कहे मुझे उनको प्रतित्व देना ही होगा, क्योंकि वे मेरे पति के प्राणप्रिय साथी थे। मेरे जीवन में उनका स्थान उतना ही श्रेष्ठ था जितना कि देवर्षण जी का। उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करने की सूचना महाराज ने दे रखी थी। आते हुए एक आसन पर बैठ गए। उनके संकेत करने से पहले मृणाल महल से चली गई। भीतरी कक्ष में मेरी उपस्थिति को वह स्पष्ट रूप से जान ली, इसलिए मैंने हाथ के सुवर्ण कंकड़ों की ध्वनि की। कक्ष के द्वार पर झिलमिलाता हुआ पर्दा पड़ा था। उस पर्दे को देखते हुए बोले, अंगरागी मुझको यहाँ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। नहीं, बल्कि मुझे को इस बात का हार्दिक दुख है कि आपको यहाँ आने के लिए मैंने उल्टा संदेश भेजा था, परंतु मैं विवश थी। आपकी कठिनाई मैं समझ गया हूँ, दासी ने वह बता दी है, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। आप इस बात पर आश्चर्य भी न करें। नहीं करूँगी, आप सबके लिए कौरव राज है, परंतु मेरे लिए उतने ही निकटस्थ हैं जितने की देवर शोण जी। यह जानता हूँ, तभी तो यहाँ आने में संकोच नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसके लिए किसी अन्य को मैं आपके पास भेज भी नहीं सकता था। ऐसा आपका कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको मुझ जैसी साधारण स्थित कर सकती है? आप साधारण नहीं हैं, कर्ण पत्नी कभी साधारण हो ही नहीं सकती। यह अतिरिक्त स्तुति की जा रही है, यह मैं कैसे कहूँ? नहीं, यह स्तुति नहीं, वस्तु स्तुति है। और आज वह समय आपके सामने आ गया है कि आपको फिर एक बार सिद्ध करना होगा कि आप साधारण नहीं हैं। ऐसी क्या असाधारण बात मुझको सिद्ध करनी होगी? आप जानती हैं कि अंगराज और मैं हम दोनों स्वयंवर के लिए कलिंगों के राज में गए थे। युवराज्ञी भानुमति को लेकर मैं आया हूँ, लेकिन उसने अपने वर की माला मेरे गले में डालने से पहले एक विचित्र शर्त रखी। कैसी शर्त? उस शर्त को मैंने केवल आप पर विश्वास करके ही माना। मुझ पर? आप दोनों के वैवाहिक जीवन में यदि मेरे कारण आनंद की कली खिल सकती है, तो मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ, क्योंकि आप मेरे पति के प्राणप्रिय मित्र हैं। शर्त क्या है? उसकी इच्छा है कि हिचकिए मत करो राज, स्पष्ट स्पष्ट कहिए कि अंगराज मेरी प्राणप्रिय सखी के साथ विवाह करते। उनके इस कथन से मैं सन्न रह गई, लेकिन क्षण भर के लिए तत्क्षण अपने को संभाल कर मैंने धैर्य से कहा, लेकिन अंगराज इसके लिए सहमत है क्या? दुर्योधन के लिए कर्ण सब कुछ कर सकता है, इसमें उसको क्या अभी कुछ संदेह रह गया है? कष्ट आपकी केवल आपकी ही सहमति का रह गया है। उसको प्राप्त करने के लिए आप सीधे यहाँ आए, यह सुझाव का अंगराज ने तो आपको नहीं दिया। छी, उनको इस संबंध में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं, तो मैं यह समझूँ क्या कि आप सहमत नहीं हैं? सो कैसे, आप सशंक होकर अनेक प्रश्न पूछ रही हैं इसीलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु यदि प्रसंग यदि महारानी भानुमती के जीवन से आया हो तो वह उन्होंने इससे भी अधिक प्रश्न पूछे होते, ऐसा आपको नहीं लगता क्या?
नहीं, वह कोई प्रश्न ही नहीं पूछती, एक वाक्य में ही प्रश्नकर्ता के सीधे बाहर का मार्ग दिखला देती है।
आप भानुमती नहीं हैं इसीलिए मैंने यहाँ आपके आने का साहस किया है। अंगराज के और आपके सुख के लिए मैं सब कुछ करूँगी, मेरी संपत्ति पर ही यदि वह विवाह सम्मति पर यह विवाह निर्भर करता है तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं सहमत हूँ। वे आनंदित होकर तत्क्षण आसन से उठे, उनसे रहा न गया। अंत में बोले, भाभी तुम्हारे लिए सचमुच ही किसी समय कर्ण ने इतना त्याग क्यों किया था, इसका कारण मुझको आज ज्ञात हो गया। एक क्षण भी न रुक कर अव्यवस्थित उत्तरी को संभालते हुए वे जाने के लिए द्वार की ओर मुड़े, लेकिन उस सत्यवती सखी का नाम क्या है? अंत में मैंने पूछ लिया, सुप्रिया। वे झटपट पैर बढ़ाते हुए भवन से निकल गए। मेरे मन का झूठा उत्साह क्षण भर में ही ढह गया। सौत, छी, यह विचार मेरे सुखी संसार के गाल पर डिठौना नहीं लगा रहा था क्या? उसका नाम सुप्रिया बता रहे थे, परंतु सचमुच वह सबको सुप्रिय लगेगी क्या? अनेक संदेहों के प्रहार से मेरा मन उद्विग्न हो उठा। कभी कभी दैव से द्युत खेलने का तरीके मनुष्य के हाथ में और रह ही क्या जाता है। प्रबंधन के कथनानुसार मुझको नए महाराणी के स्वागत की तैयारी करनी पड़ी, परंतु वह कितने कितने भिन्न अर्थ में। अब तक दोनों कुंडलों पर मेरा अधिकार था, अब एक कुंडल सुप्रिया का था। जो मुझको बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ था वह उसको सहज ही प्राप्त हो गया। कुछ लोग भाग्यवान होते हैं, यह सच है। 8. अंगराज और सुप्रिया का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। महाराज दुर्योधन का कथन सत्य निकला, अंगराज उनकी इच्छा को अस्वीकार न कर सके। कभी कभी सत्य कल्पना से भी अधिक अद्भुत होता है, और चूंकि वह सत्य होता है इसीलिए उसे सहन भी करना पड़ता है। मैंने निश्चय कर लिया कि सुप्रिया को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। उसको कष्ट देने का अर्थ था अपने पति को दुखित करना। स्त्री कम से कम हानि और अधिक से अधिक लाभ का चुनाव किया करती है, वही उसका जन्मजात स्वभाव होता है। सुप्रिया को अलग महल दिया गया। इतना सब कुछ होने पर भी मेरा मन अपने पति के प्रेम के संबंध में पहले की तरह ही आश्वस्त था। उनका मुझ पर जो प्रेम था वह तो कभी रत्ती भर भी कम नहीं हो सकता था। गंगा के तट पर भीगे हुए उत्तरी की स्मृति में कैसे भूल सकते थे, लेकिन सुप्रिया मुझसे भी दो डग आगे बढ़ गई थी। मेरी समस्त कल्पनाओं को उसने जोर का आघात दिया। वह इतनी समझदार थी कि विवाह होते ही सबसे पहले वह मुझसे ही मिलने आई और सविनय वंदन कर बोली, दीदी मैं आपकी कनिष्ठ भगिनी हूँ, आपने ही मुझको जीवन दान दिया है। यदि आपने सम्मति न दी होती तो मुख से अंगराज का नाम लेते हुए मृत्यु को स्वीकार करना ही मेरे लिए शेष रह जाता। उन पर मेरे प्रेम की सीमा नहीं, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कृष्णापुर के कुंडल प्राप्त करके ही रहूंगी। सुप्रिय, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। इतने पराक्रमी पति को संभालना मुझे अकेली के बस की बात नहीं थी। किसी भी बात को उनके मन को चोट न पहुंचे इतनी सावधानी रखना, ध्यान रखना। बड़े लोगों के दुख भी बड़े ही होते हैं। उनके निवारण के लिए उनकी पत्नी केवल संकल्प और प्रेम से ही काम चला सकती हैं, बल्कि धैर्य और संयम से भी आवश्यकता होती है। अनेक शंकाओं से आच्छादित मेरा मन सुप्रिया के दर्शन मात्र से निश्चिंत हो गया। हरणी जैसे नेत्र वाली वह हरणी जैसे निष्कपट और निरागस थी। अपने नाम की तरह ही वह मुझको अत्यधिक प्रिय लगी, नाम के अनुसार सुप्रिया भी थी। 9. सुप्रिया के विवाह के बाद महाराज से बातें करने के लिए मुझको एक बड़ा अच्छा कारण मिल गया था। केवल स्त्रियां ही अपना स्वार्थ देखती हैं ऐसी बात नहीं, पुरुष भी ऐसे ही होते हैं। मैं जब यह कहती तब वे आश्चर्य से पूछते, किस कारणवश तुम मुझसे यह बात कह रही हो? कहूँ ना तो क्या करूँ? आपने तो दो दो विवाह कर लिए लेकिन अपना छोटा भाई सयाना हो गया है, इस ओर आपको ध्यान ही नहीं, इस पर कोई और क्या कहे? वैशाली, कम से कम तुम्हारे संतोष के लिए मुझको अब शोण का विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। नहीं तो मुझसे बदला लेने के लिए तुम स्वयं अग्रणी बनकर एक ही समय में उसके तीन तीन विवाह करके मुक्त हो जाओगी, और जो भी लड़कियां मिल जाएंगी उन्हीं से। आपसे कैसा बदला? आपसे बदला लेने का अर्थ क्या यही नहीं है कि मैं स्वयं अपने से बदला लूँ? इस पर वे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वे जान गए थे कि यदि अपने भाई का विवाह उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र नहीं किया तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उनको छेड़ती रहूंगी। 10. महाराज दुर्योधन के विवाह के बाद यत्र तत्र सर्वत्र यह चर्चा होने लगी, अब शीघ्र ही हस्तिनापुर के अभिषिक्त राजा हो जाएंगे। सब लोग यह कह भी रहे थे कि सेनापति के रूप में वे अंगराज की नियुक्ति करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र अत्यधिक वृद्ध हो गए थे, उन्होंने इतने वर्षों तक कुरुराज की अच्छी तरह देखभाल की, यही कम महत्व की बात नहीं थी। फिर भी नगर के वृद्ध लोग सदैव महाराज पांडु का स्मरण करके कहा करते थे कि महाराज पांडु ने दिग्विजय कर हस्तिनापुर राज की कृति में चार चांद लगाए थे।
उनके कमल पुष्प जैसे पांच पुत्र राजमाता के साथ अग्नि में भस्मा साथ हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे जीवित हैं, यदि जीवित हैं तो उनको हस्तिनापुर में वापस लाना चाहिए। नगर के लोगों की यह चर्चा मुझको कभी देवर शौन जी से तो कभी सत्यसेन दादा से कभी प्रभंजन से तो कभी मृणाल से मालूम होती रहती थी। पांडवों की स्मृति को प्रेम और श्रद्धा से सुरक्षित रखने वाले अनेक नगरजन हस्तिनापुर में थे। प्रसंग आने पर मुझको भी राजमाता कुंतीदेवी की याद आती थी। उनकी याद के साथ ही घूमने वाले उन पांच भाइयों की भी याद आती। वे संसार में नहीं है इस बात पर मुझको कभी विश्वास ही नहीं हुआ था। काल के प्रवाह में कल जो सत्य लगता था आज वही असत्य हो जाता है, और अंत में यही हुआ। दो तीन वर्षों तक गुप्त रहने वाले पांडव पांचाली को स्वयंवर में एकदम प्रकट हो गए। स्वयंवर के बाद तुरंत वे मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण उनके मेरी भाई थी। सभी नगरजनों ने समझा कि वे अब मथुरा में ही निवास करेंगे, क्योंकि सभी जानते थे कि महाराज दुर्योधन के उनसे कभी पट ही नहीं सकते। लेकिन मेरी बार बार यह इच्छा होती थी कि वे पांचों भाई कम से कम एक बार तो हस्तिनापुर आए। पर मैं युवराज नकुल तो मुझको अंगराज जैसा ही प्रतिमूर्ति लगते थे, केवल उनके पास कवच कुंडलों की कमी थी और महाराज जैसे हिरण्यवर्णी घुंघराले बाल उनके नहीं थे। मेरी तीव्र इच्छा होती थी कि इन पांच भाइयों को एक बार अवश्य देखूं। काल के प्रभाव में मेरे पुत्र का दुख अब मंद हो गया था, और एक दिन मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। अंगराज और मैं हम दोनों देवर शोण जी के लिए देश विदेश की सुंदर लड़कियों की चर्चा आपस में कर रहे थे। वैशाली, तुमने कुलेंद्र देश के संबंध में कभी सुना है? सुना तो है किंतु अधिक नहीं। वह एकदम हिमालय के जड़ में है। हरी भरी वनस्पतियों से सदा सर्वदा विभूषित रहने वाला वह देश पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है। उस देश की स्त्रियां अप्सरा जैसे रूपवती होती हैं। शोण के लिए वधु ढूंढने मैं वहां जाऊंगा। उनका अपने भाई पर सचमुच अतुल प्रेम था। उनका यह विचार सुनकर मैं कुछ कहने जा रही थी, कितने में महाराज दुर्योधन का विशेष सेवक प्रभंजन भीतर आया और शीघ्रतापूर्वक बोला, महाराज अत्यावश्यक राजसभा बुलाई जा रही है। मुझको आदेश दिया गया है कि आपको भी राजसभा में ले आऊं। क्यों, क्या बात है प्रभंजन, इस सभा का प्रयोजन? महाराज ने आसन से उठते हुए पूछा। मथुरा से चले हुए पांडव हस्तिनापुर की सीमा के समीप आ गए। सूचना आई है कि वे गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचे हैं। महाराज दुर्योधन ने अपने राज्य का आधा भाग मांगने आ रहे हैं, वैसी कुछ भनक पड़ी है। चलो प्रभंजन, तुम पहले दे पहुंचो, मैं सभा के वस्त्र परिधान पर आ ही रहा हूँ। वस्त्र धारण करने के लिए वस्त्रागार में गए। मेरे मन में संदेह की चिपकली चुक चुक कर उठी। इस राज्यसभा में फिर कोई झगड़ा न हो जाए। प्रश्न राज के बंटवारे का था। राज के लिए लाखों वीर मस्तक लड़ से अलग हो जाते हैं। यवनस्व के विश्व वृक्ष लहलाते हैं, जो नहीं होना चाहिए वह अटल रूप में होता है। जग की दृष्टि में संपत्ति राज्य कीर्ति आदि बहुमूल्य होंगे, परंतु स्त्री के लिए उसका प्रिय पति ही अमूल्य निधि होता है, पति ही उसका सिंहासन होता है। जैसे ही वे वस्त्र बदल कर आए मैं उनके सामने पहुंचे। मेरा मन मुझसे कह रहा था कि आज उनसे कुछ कहना अत्यावश्यक था। वैशाली, तो मैं राजसभा चलता हूँ। मस्तक पर सुवर्ण मुकुट धारण करते हुए वे मुस्कुराकर बोले, ठहरिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज मन कह रहा है कि कुछ मांग ले। या मांगने का समय नहीं है, मैं कुरुओं का राज्य का एक योद्धा हूँ, तो मैं एक योद्धा की पत्नी हूँ। ठीक है, समय है मांगने का। विशाली, इस समय कोई भी शक्ति मुझको राजसभा में जाने से नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं। मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी, आप राजसभा में अवश्य जाएं, परंतु एक वचन दे जाएं। कैसा वचन? पांडवों के राज्य के बंटवारे के बीच आप कुछ न बोले, बस यही चाहती हूँ। यह कैसे संभव? दुर्योधन के विचारों का समर्थन करना कर्ण के जीवन का उद्देश्य है। तुम आज किसके कारण सोमवंश के इस प्रसाद में अभिमान के साथ अंगरागी बनकर घूम रही हो? क्या तुम यह नहीं जानती? या मैं जानती हूँ, परंतु पांडव महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। यह बात मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा है। राजमाता कुंती देवी की ओर देखने पर मुझको भी ऐसा ही लगता है। राजमाता का नाम सुनते हुए एकदम अकारण ही गंभीर हो गए। अपने कंधे फिसलते हुए उत्तरी को संभाल कर थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहे। चुप्पी भंग करते हुए मैं बोली, कौरवों और पांडवों के राज्य के बंटवारे में आप किसी भी पक्ष न ले, क्योंकि शायद वह शाश्वत शत्रुता में बदल जाए। मेरे पास आकर सदैव की बात मेरा मुख अपने अंगर माथुरियों में लेकर वे मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, वैशाली, क्षण भर पहले जब तुम स्वर्ण के विवाह का विचार कर रही थी तब तुम मुझको उसकी बड़ी बहन जैसी लगी थी। अब मेरा विचार करते समय क्षण भर में मुझको दो प्राणियों की माता लगी थी, एक तो जो तुम्हारे उदर में है और उस कर्ण के पुत्र की, और एक स्वयं कर्ण की। स्त्री यदि चाहे तो पुरुष से एक ही समय में अनेक नाते से व्यवहार कर सकती है। यही बात तुमने आज सिद्ध कर दिखाई है। प्रणय के समय मादकता बिखेरने वाली प्रणयनी और पुत्र की सुरक्षा के लिए सजग रहने वाली माता दोनों कभी कभी एक साथ एक ही शरीर में और एक ही समय में रह सकती है। इस जगह यदि राधा माता होती तो उसने भी आज ठीक यही कहा होता। जाइए आप लोग, लेकिन सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। ठीक है, तुम्हारे कथन में विश्वास रखो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अनजाने ही उन्होंने वचन दे दिया, वे चले गए। मैं निश्चिंत हो गई। नगर में पांडवों के आने की सूचना देने वाले वाद्य बज रहे थे। मैं गवाक्ष से खड़ी हो गई। मैं राजमाता कुंती देवी को एक बार देखना चाहती थी। लगभग आधी घड़ी के भीतर ही पांडव राजमाता कुंती देवी द्रौपदी विपुल जन समुदाय के साथ राजभवन के सामने आए। उनके साथ आचार्य विदुर थे। उनके लिए एक साधारण रथ तक नहीं भेजा गया था। यह बात मुझे बुरी लगी। मैं गवाक्ष में से राजभवन के महाद्वार पर होने वाली सभी घटनाओं को देख रही थी। पितामह भीष्म और आचार्य विदुर ने पांडवों को कसकर आलिंगन किए, परंतु महाराज धृतराष्ट्र के आलिंगन में वह गर्माहट नहीं थी। महाराज दुर्योधन भीम की ओर देख रहे थे, लेकिन पीठ पर एक वृद्धा शिशु को लिए हुए दोनों के होने के कारण भीम का सिर झुका हुआ था। युवराज अर्जुन अंगराज के कुंडलों की ओर और युधिष्ठिर पैरों की ओर एकटक देख रहे थे। राजमाता कुंती देवी और अंगराज एक दूसरे को इतना ध्यान से क्यों देख रहे थे? शायद अंगराज राजमाता की आंखों में झांक कर यह पता लगा रहे थे कि पांडव महाराज पांडु के पुत्र हैं क्या, और राजमाता अपने नेत्रों से कह रही थी कि अंगराज कर्ण तुम ही अपने दुर्योधन को विश्वास करा दो कि हम उस राज के उत्तराधिकारी। युवराज भीम की पीठ पर जो वृद्धा थी उसकी पहली में कभी नहीं सुलझा सके। वह स्त्री को इस संबंध में मैंने बहुत तर्क वितर्क करके देखा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में मैंने पूछताछ करने के लिए अपने महल से मृणाल को भेजा। उसने नीचे जाकर उस भीड़ में घुसकर स्त्री के संबंध में पूछताछ की और फिर वापस आकर सांस रोककर बोली, महारानी वह एक दासी है। दासी? युवराज भीम की पीठ पर? हाँ, वह दासी राजमाता कुंती देवी की दासी है। धात्री या धरित्री ऐसा ही कुछ नाम है उसका। क्या नाम बताया उसका? धात्री। चाहे तो उस नाम के ध और त्रक इन कठोर अक्षरों के कारण है या अन्य किसी कारण से हो, मुझको उस दासी का नाम तनिक भी अच्छा नहीं लगा। मैंने ऊपर से देखा, राजमाता कुंती देवी और द्रौपदी आचार्य विदुर के साथ राजप्रसाद से बाहर चली गई, क्योंकि आचार्य ने सर्व संग त्याग कर दिया था और राजभवन में नहीं रहते थे। कुंती देवी नगर के बाहर उनकी पर्णकुटी में ही रहने वाली थी। अन्य लोग राज्यसभा के सभागृह की ओर मुड़े। अंगराज ने बड़े खड़े प्रबंधन को युवराज भीम की पीठ पर से वृद्धा को उतार देने का संकेत किया। सब लोग राजभवन की सीढ़ियां चढ़कर चले गए। सबसे पीछे शकुनी मामा थे, उन्होंने महाराज दुर्योधन के कान के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा यह अन्य कोई जान नहीं सकता था। युवराज अर्जुन का पृष्ठ भाग देखते समय इन्होंने मेरे पुत्र को मारा है इस सत्य पर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे कितने धीरे धीरे पैर रखते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। प्रत्यक्ष युद्ध होते समय कौन मारा जा रहा है इस ओर इन योद्धाओं का ध्यान ही होता ही नहीं। कौन बता सकता है यूं ही वे कितने समय दिखाई देते हैं, लेकिन युद्ध की आग भड़कने पर वे कितने क्रुद्ध हो जाते हैं।